एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि को सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जी सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया,
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनना और उसे सीखना चाहते हैं। पिता हमारे मनों को खोल दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तो तेरा वचन के द्वारा बहुताय से आशीष दे और मेरे संग हो पिता तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा तेरे वचनों को बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, इन दिनों हम मसीह व्यवहार के विषय में सीख रहे हैं। आज का मेरा संवाद का शीर्षक है मसीह व्यवहार भाग 3, और आज हम लोग मसीह पहनावे का आशीर्वाद के विषय में चर्चा करेंगे। परमेश्वर ने आदम व हवा के लिए प्रथम वस्त्र प्रदान किया एवं वह जानता है कि आज हमें उपयुक्त वस्त्रों की आवश्यकता है। मत्ती 6:25-33 आप पढ़ सकते हैं। हमें अपने कपड़ों के चुनाव को सादगी, शालीनता, व्यवहारिकता, स्वास्थ्य और आकर्षण के सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिए। आइए हम इनके विषय में आगे देखें। पहला, सरल। जैसा कि हमारे जीवन के अन्य क्षेत्रों में होता है, मसीह सादगी का आह्वान हमारे पहनावे पर प्रभाव डालता है। मसीह गवाही सादगी की मांग करती है। जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं वह संसार को दिखाता है कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। विक्टोरियन युग से विरासत में मिली कानूनी आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि यीशु के लिए हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में। दूसरा है उच्च नैतिक गुण का। मसीह अपने चरित्र की सुंदरता को ऐसे पहनावे से नहीं बिगाड़ेंगे जो शरीर की अभिलाषा को उत्तेजित करता है। पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि वे दूसरों को गवाही देना चाहते हैं, वे शालीनता से कपड़े पहनेंगे और व्यवहार करेंगे, ना कि शरीर के उन हिस्सों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे जो यौन इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं। लज्जा नैतिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। एक मसीह का उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना, ना कि स्वयं की। तीसरा, व्यवहारिक एवं कम खर्ची, क्योंकि वे उन धन के भंडारी हैं जिसे परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है। मसीह सोने या मोतियों या बहुमूल्य वस्त्रों से दूर रहकर कम खर्ची का अभ्यास करेंगे। देखिए 1 तिमोथियस 2:9। हालांकि कम खर्ची का अभ्यास करने का मतलब यह नहीं है कि सबसे सस्ते कपड़े खरीदना। अक्सर उच्च कोटि वाली वस्तुएं लंबे समय में अधिक किफायती होती हैं। चौथा, स्वास्थ्य वर्धक। यह केवल आहार ही नहीं है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मसीह उन कपड़ों के ऐसे पहनावे से बचेंगे जो शरीर की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं, या जो इन्हें संकुचित करते हैं, या अन्यथा इसे इस तरह से प्रभावित करते हैं जिससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। पांचवा है उच्चतम एवं प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा चित्रित। मसीह जीविका का घमंड के विरुद्ध चेतावनी को समझते हैं जो मिलता है 1 यूहन्ना 2:16 में। श्वसनों का उल्लेख करते हुए मसीह ने कहा, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। मत्ती 6:29 देखे। इस प्रकार उसने स्पष्ट किया कि सुंदरता की स्वर्गीय अवधारणा उत्तमता, सादगी, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्य द्वारा चित्रित होती है। संसारिक प्रदर्शन जैसा कि अस्थाई वेशभूषा की शैलियों में देखा जाता है, उसका परमेश्वर की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। 1 तिमोथियस 2:9। मसीह दुनिया की तरह दिखने और व्यवहार करने से नहीं, बल्कि एक आकर्षण और स्फूर्तिदायक अंतर प्रकट करके अविश्वासियों को जीतते हैं। पत्रस ने कहा, अविश्वासी जीवन साथी अपनी अपनी पत्नियों के भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर जीते जा सकते हैं। बाहरी सजावट के बजाय उसने कहा, विश्वासियों को छिपा हुआ या गुप्त मनुष्यत्व, समर्थता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट विकसित करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। देखिए 1 पत्रस 3:1-4 में शास्त्र सिखाता है कि पहला, चरित्र ही व्यक्ति का असली सौंदर्य दर्शाता है। पत्रस व पौलुस दोनों ने अलंकरण के क्षेत्र में मसीह पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन के लिए बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किया। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, 1 पत्रस 3:3। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों के लिए यही उचित भी है। 1 तिमोथियस 2:9-10। दूसरा है सरलता, सुधार एवं जागृति के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। जब याकूब ने अपने परिवार को परमेश्वर को समर्पित करने के लिए बुलाया, तब उन्होंने सब पराए देवताओं को जो उनके पास थे और उनके कानों के कुंडल सभी को निकाल फेंका, और तब याकूब ने उन्हें वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। पाते हैं उत्पत्ति 35 का 2 और 4 में। इसराइलियों द्वारा सोने के बछड़े के साथ धर्म त्याग के पश्चात परमेश्वर ने उन्हें यह आदेश दिया, अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। पश्चाताप में उन्होंने अपने गहने उतार दिए। निर्गमन 33:5-6 देखे। पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि शास्त्र इस धर्म त्याग को हमारे लिए चेतावनी के रूप में दर्ज करता है जिसका पूरा होने का समय आ चुका है। 1 कुरिन्थियों 10:11। तीसरा है, अच्छे भंडारीपन के लिए बलिदानी जीवन की आवश्यकता है। जबकि अधिकतम संसार कुपोषित है, भौतिकवाद मसीहों के सामने बहुमूल्य वस्त्र महंगी गाड़ियां व आभूषण से लेकर आलिशान घरों तक का प्रलोभन देता है। जीवन शैली और पहनावे की सरलता मसीहों को 20वीं सदी के मूर्ति पूजक समाज के लालच भौतिकवाद और भड़कीलेपन के विपरीत खड़ा करती है, जहां लोगों के बजाय भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है। इन शास्त्रीय शिक्षाओं एवं ऊपर दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि मसीहों को स्वयं को आभूषणों से सुसज्जित नहीं करना चाहिए। हम इसका मतलब यह समझते हैं कि अंगूठियां, कानों के झुमके, हार एवं कंगन व दिखावटी टाई, कलाई बंद एवं पिन और किसी भी प्रकार का अन्य आभूषण पहनना जिसका मुख्य उद्देश्य दिखावा करना है अनावश्यक है, और पवित्र शास्त्र द्वारा आग्रह किए गए अलंकरण की सादगी के अनुरूप नहीं है। बाइबल भड़कीले सौंदर्य प्रसाधनों को बुतपरस्ती और धर्म त्याग के साथ जोड़ती है। दूसरा राजा 9:30, यिर्मयाह 4:30। सौंदर्य प्रसाधनों के संबंध में इसलिए हम मानते हैं कि मसीहों को एक प्राकृतिक स्वस्थ रूप रंग बनाए रखना चाहिए। यदि हम उद्धारकर्ता को अपने बोलने कार्य करने एवं पहनावे के द्वारा ऊंचा उठाते हैं तो हम चुंबक की तरह बन जाते हैं जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करते हैं। आगे हम देखेंगे मसीही मानकों के सिद्धांत। अपनी सभी अभिव्यक्तियों में मसीह जीवन शैली मसीह के माध्यम से उद्धार की प्रतिक्रिया है। मसीह परमेश्वर का सम्मान करना चाहते हैं और यीशु की तरह जीना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग मसीह जीवन शैली को क्या ना करे की सूची के रूप में देखते हैं, हमें इसे उद्धार के ढांचे में सक्रिय सकारात्मक सिद्धांतों की एक श्रृंखला के रूप में देखना चाहिए। यीशु ने जोर देकर कहा कि वह इसलिए आया कि हम जीवन पाए और इसे और बहुतायत से पाए। वे कौन से सिद्धांत हैं जो हमें पूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं? जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो एक निश्चित परिवर्तन होता है जो व्यक्ति के आसपास के लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यूहन्ना 3:8। आत्मा न केवल जीवन में प्रारंभिक परिवर्तन करता है, उसका प्रभाव जारी रहता है। आत्मा का फल प्रेम है, गलातियों 5:22-23। मसीह धर्म की वैधता के लिए सबसे शक्तिशाली तर्क एक प्रेम करने वाला और प्रेम करने योग्य मसीह है। मसीह के स्वभाव के साथ हमें जीना है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, फिलिपियों 2:5। सभी परिस्थितियों में अनुकूल या प्रतिकूल हमें मसीह की इच्छा और स्वभाव के अनुरूप समझने और जीने का प्रयास करना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 2:16। एलन व्हाइट ने एक अच्छे जीवन के सुंदर परिणामों को लिखा है जो मसीह के साथ इस प्रकार के संबंध में जिया जाता है। सभी सच्ची आज्ञाकारिता हृदय से आती है। मसीह के साथ यह हृदय कार्य था, और यदि हम सहमति देते हैं तो वह हमारे विचारों और लक्ष्यों के साथ अपनी पहचान स्थापित करेगा, हमारे हृदयों एवं मनों को अपनी इच्छा की अनुरूपता में लाकर मेल करेगा कि जब हम उसकी आज्ञा पालन करेंगे तो हम अपने आवेगों को पूरा करेंगे। इच्छा जो शुद्ध एवं पवित्र होगी उसकी सेवा करने में सबसे अधिक आनंद प्राप्त करेगी। जब हम परमेश्वर को जानते हैं जैसा कि उसे जानना हमारा सौभाग्य है, तो हमारा जीवन निरंतर आज्ञाकारिता का जीवन होगा। मसीह के चरित्र की सराहना के द्वारा, परमेश्वर के साथ सहभागिता के द्वारा पाप हमारे लिए घृणित हो जाएगा। परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए हमें जीना है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। एक तरीका जिससे हम अपनी कृतज्ञता दिखा सकते हैं वह स्तुति के माध्यम से है जो हम उसे देते हैं। भजन संहिता आत्मिक जीवन के इस पक्ष पर जोर देती है। इस प्रकार से मैंने तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। भजन संहिता 63:2-5। मसीह के लिए स्तुति का ऐसा रवैया जीवन के अन्य कार्यों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखेगा। हमारे कुशारोपित उद्धारकर्ता की ओर दृष्टि करते हुए, जिसने हमें दंड से छुड़ाया और हमें पाप की शक्तियों से छुटकारा दिलाता है, तब हम केवल वही करने के लिए प्रेरित होंगे जो उसे भाता है। 1 यूहन्ना 3:22, Ephesians 5:10। मसीह अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 2 कुरिन्थियों 5:15। प्रत्येक सच्चा मसीह उसके संपूर्ण कार्यों में, उसके संपूर्ण विचारों में, उसके संपूर्ण बोलने में एवं उसकी संपूर्ण इच्छाओं में मसीह को सर्वप्रथम रखता है। उसके उद्धारकर्ता के समक्ष उसका और कोई अन्य देवता नहीं। 1 कुरिन्थियों 10:31। एक उदाहरण बनने के लिए जीना है। पौलुस ने कहा, तुम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। 1 कुरिन्थियों 10:32। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम 24:16। यदि हमारा उदाहरण अन्यों को पाप की ओर ले जाता है तो हम उन लोगों के लिए ठोकर बन जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर अपना पुत्र मसीह का बलिदान दिया। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसा वह चलता था। 1 यूहन्ना 2:6। सेवा करने के लिए हमें जीना है। मसीह जिस तरह से जीते हैं उसका एक प्रमुख कारण खोए हुए पुरुषों और महिलाओं को बचाना है। पौलुस कहता है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। हम पढ़ते हैं इसे 1 कुरिन्थियों 10:33 में और आप इससे तुलना कर सकते हैं 20:28 से। आवश्यकताएं और दिशा निर्देश। एक व्यक्ति की जीवन शैली के कारण जो प्रभाव उसके आध्यात्मिक अनुभव और उसकी गवाही पर पड़ता है, एक कलीसिया संगठन के रूप में हमने सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के रूप में कुछ विशेष जीवन शैली मानकों को निर्धारित किया है। इन मानकों में तंबाकू, मादक पेय, बुद्धि परिवर्तन रसायनों, अशुद्ध मांस खाद्य पदार्थों से परहेज एवं वस्त्रों व खाली समय के उपयोग में एक प्रगतिशील मसीह अनुभव शामिल हैं। ये न्यूनतम मानक एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के संपूर्ण आदर्शों को समाविष्ट नहीं करते हैं, वे बस एक बढ़ते उज्जवल मसीह अनुभव को विकसित करने के लिए आवश्यक पहले कदमों का संकेत देते हैं। ऐसे मानक विश्वासियों के समुदाय के भीतर एकता के लिए आवश्यक आधार भी प्रदान करते हैं। मसीह व्यवहार का विकास करना है। परमेश्वर समानता प्रगतिशील है जिसमें मसीह के साथ आजीवन मेल शामिल है। पवित्र रहन सहन इच्छाओं को मसीह के नियंत्रण में प्रतिदिन समर्पण करने से कुछ कम नहीं एवं उसकी शिक्षाओं के प्रति प्रतिदिन की सहमति जैसा कि वह हमें हमारे बाइबल अध्ययन और प्रार्थनाओं में प्रकट करता है, क्योंकि हम अलग अलग दरों पर परिपक्व होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम कमजोर भाइयों व बहनों का आंकलन करने से बचें। रोमियो 14:1-15। उद्धारकर्ता के साथ मेल में मसीहों के पास केवल एक आदर्श है कि वे स्वर्गीय पिता का आदर करने का भरसक प्रयत्न करें, जिसने उनके उद्धार के लिए ऐसी समृद्ध योजना बनाई है। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10:31 में हम यह पढ़ते हैं। तो भाई और बहनों, आइए, हमें परमेश्वर बुलाता है एक पवित्र जीवन जीने के लिए जिससे परमेश्वर का महिमा हो। हम एक आदर्श जीवन जिए, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा, और दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण दे कि दूसरे लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित हों और परमेश्वर के राज में बचाए जा सकते हैं। वे लोग हमारे जीवन से ठोकर ना खाए, परंतु यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करें, यीशु मसीह के तरफ आकर्षित हों। हमारे जीवन ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर पिता हमें मदद करे हमें अपना पवित्र आत्मा देने के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, और तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, तूने हमें बुलाया है कि हम एक पवित्र जीवन जिए। हमें एक अच्छा जीवन और अच्छा उदाहरण दे करके लोगों को तेरे निकट लाना है पिता। हमें तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे और हम सबों को तेरा राज के लिए तैयार कर, हमारे जीवन को तैयार कर।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।